मुफ्ती साहब की खिदमत में मेरा एक सवाल है कि अगर कोई शख्स किसी पर एतमाद करते हुए उसको काम सिखाता है, कोई हुनर सिखा देता है और इस दौरान वो उसको सैलरी वगैरह भी देता है, अब वो जब काम अच्छी तरीके से समझ जाता है, सब कुछ सीखने के बाद वही शख्स उसी मार्केट में अपना काम शुरू कर देता है, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या है, शरीयत क्या हुक्म देती है, जरा इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाए।
देखिए, जो आदमी कुछ सिखाता है, बंदा जिससे कुछ सीखता है, यकीनी तौर पर उसका एहसान मंद होता है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि दुकान पर काम कर रहे हैं या मैकेनिक हैं, उससे सीख रहे हैं, और एक वक्त आता है कि बंदा ये चाहता है कि भाई ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। बाज़ू का रिश्तेदार ये कहते हैं कि तुम ये काम जानते हो, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप अलग काम कर लो। अब यहाँ हमें इस मामले को दो जावियों से देखना चाहिए। अगर एक ही जाविये से देखा जाएगा इस मामले को तो एतदाल की राह पर कायम नहीं हो सकेंगे, इफरात व तफरीत के रास्ते पर हम निकल जाएंगे। अगर ये सोच लिया जाता कि जिसने काम सीख लिया है, जो कुछ हुनर सीख गया है, किसी के पास रहकर किसी को तिजारत करना आ गई है, और उसे ये हक ना दिया जाता कि वो अपना काम करे जाके, तो फिर तो हर मुल्क में एक ही दुकान होती, एक ही होटल होता, एक ही स्कूल होता, एक ही करियाने की दुकान होती और एक ही मेडिकल स्टोर होता, सब चीज़ें एक ही की होती। एक ज़्यादातर जो लोग आते हैं मार्केट में, एक बैकग्राउंड की वजह से भी आते हैं, बाज़ औक़ात ख़ानदानी बैकग्राउंड भी होता है कि आधा का काम था, चचा करते रहे, फिर अलग हुए, वालिद के हर भाई ने जो है वो दुकान अलग कर ली, यूँ फैलते चले गए। तो ये जो शाखें बनती हैं, ये जो फैलाव होता है, ये एक फितरी मामला है, ऐसा तो होना ही है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही जनाब दुकान हो उस चीज़ की, मार्केट में कोई दुकान ना खोले। एक जाविया तो ये है कि आप किसी पर जबर नहीं कर सकते, उसका जो बुनियादी हक है वो उससे नहीं छीन सकते। आप कैसे बाउंड कर सकते हैं वो सारी उम्र आपकी दुकान पर मुलाजमत ही करता रहे, आपके दुकान पर काम ही करता रहे, कहीं और जाके अपना काम ना खोल सके। ना शरीयत ऐसा करने को मना कहती है, ना कानून कोई मना कहता है, और ना कहीं और से जो है इस बात की ममानत का पहलू मौजूद है।
मतलब अखलाकी तौर पे ये सपोज किया जाता है कि सब चीजें मैंने सिखाई हैं।
अब यहाँ पर मैंने अर्ज किया कि दो जावियों से हमें देखना होगा
जी।
पहला जाविया तो ये है कि हम इस बात को रियलाइज करें कि ये उसका बुनियादी हक है, और काम सीखने के बाद वो अपना काम शुरू करता है तो बिल्कुल उसको करने में कोई ममानत नहीं है, कोई रुकावट और कदगन हम नहीं लगा सकते, ना शरीयत ने लगाई है। अब दूसरा इसका जो एंगल है और जो दूसरा जाविया है वो ये है कि एहसान मंदी का कुछ ना कुछ तो एक तकाजा होता है। हमने तो ये सीखा है कि अगर किसी मुलाजिम को आप फारिग भी कर रहे हैं या मुलाजिम खुद भी छोड़कर जा रहा है, तो उसको उस अंदाज पर जाना चाहिए कि जिंदगी में कोई ऐसा मुश्किल मोड आ गया तो वापस आकर ज्वाइन कर सके। होता यह है कि ठीक है, एक आदमी अलग हुआ है, उसने अपने सेठ से बहुत कुछ सीखा या अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा, अब उसने जाके अपना अलग काम शुरू किया है, तो उसको मुकाबले पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करें और टकराव की कैफियतें ना हो, ऐसा माहौल पैदा करें। टकराव की कैफियत कहाँ होती है कि आपको पता है कि जनाब मैं पिछली दुकान पर जो था तो उस दुकान पर फला फला आदमी आकर माल लिया करते थे। अगर आप मार्केट में आए हैं तो अपनी जिंदगी नई शुरू करें, नए ग्राहक बनाएं, और नया रोजगार आपने शुरू किया तो ग्राहक भी नए बनाएं। अब आप पुराने सेठ के ग्राहक तोड़ते हैं, जो पुराने उस बंदे के पास जिसके पास आप काम किया करते थे, उससे जो तजारत करते थे, अब आप उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसके पास ना जाओ, मेरे पास जाओ। ये जो मामला जब शुरू होता है तो फिर एक तनाव की कैफियत बन जाती है, दिलों में बात आ जाती है, और फिर एक बड़े मुश्किल हालात होते हैं और एक मुकाबले पर आने वाली बात बन जाती है। तो इस मामले में भी एतदाल के रास्ते पर चलना चाहिए। जिसने दुकान कायम की वो एहतराम का रिश्ता भी कायम रखे कि भाई ठीक है, आप उससे ख़रीदारी करते हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उससे मत खरीदें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है बंदा हसद के रास्ते पर भी आ जाता है कि भाई ये जो पार्टी फलां के पास जाती है ये उससे महरूम हो जाए ये बंदा और मेरे पास आ जाए। तो आप کسی کے متعلق زوال نعمت کی نیت نہ کریں، ہاں یہ کہیں کہ ٹھیک ہے فلاں کا روزگار چل رہا تو میرا بھی چل جائے، فلاں کا نہ چلے یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو دونوں زاویوں سے دیکھنا ضروری ہے، اس نے جو سکھایا ہے، اس نے جو آپ پر وقت صرف کیا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے فیروز بھائی
جی،
ضروری نہیں کہ ہر سکھانے والا صرف احسان ہی کر رہا ہو، بعض اوقات بڑے ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ
سکھانے والا
بہت ظلم کر رہا ہوتا ہے، یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ بندہ مقابلے پر جو آ کے کھڑا ہوتا ہے نا
جی،
وہ ساری جو نا چیزوں کی کسر نکال رہا ہوتا ہے، اس کا لب و لہجہ ایسا تھا، اس کا انداز ایسا تھا، گالیاں دیتا تھا، تھوڑے سے پیسے دیتا تھا، کام جتنا وقت مقرر اس سے کئی گنا زیادہ کرواتا تھا۔ انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، بیہیویئر بعض اوقات وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ تو جو بیہیویئر ہوتا ہے کسی آدمی کا کہ وہ ایک حقیر سمجھ کر بات کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کی کسر نکال رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم تو یہی تلقین کریں گے اور یہی شریعت کا پیغام ہے کہ بندے کو معاف کرنا چاہیے، جو ماضی میں جو ہے وہ الجھا رہتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہوتا ہے، ماضی کی جو بھی الجھنیں رہی ہوں، جو بھی پریشانیاں رہی ہوں، جو بھی مشکلات آپ نے فیس کی ہوں، وہ ماضی کا حصہ رہنی چاہیے، آگے بڑھتے رہیں۔ مثبت طریقے سے بندہ جب آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔